आज परम महिमामय गौर पूर्णिमा है। श्री गौरंग महाप्रभु का आविर्भाव महामहोत्सव। आविर्भाव अवतरण, अवतरण मतलब उतरना। जब उस जगत से इस शुष्क जगत में कोई उतरता है तो उसे आविर्भाव कहते हैं। उतरना, अवतरण। तो आज के दिन श्री गौरंग महाप्रभु अवतरित हुए हैं, उतरे हैं इस जगत में। वैसे तो भगवान कण कण में विराजमान है, परंतु भौतिक कलमश के रहते हृदय में भगवान हमारे नयनों के समक्ष हमें नजर नहीं आते। परंतु कई बार भगवान कलमश युक्त नयनों के भी सामने प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को अवतरण कहा जाता है। ठीक है, आज हम व्यक्तिगत रूप से समझेंगे कि किस प्रकार से इस अवतरण से हमारे जीवन में क्या रिलेशन है। जैसे मान लीजिए आपको किसी को, जैसे अगर आपको पूरे दिल्ली का राज, पूरे दिल्ली आपका हो जाए, अगर सब कुछ धन संपत्ति पास आपका, क्या नाम है, ब्रजेंद्र माता, तो ब्रजेंद्र माता का सब कुछ हो जाए, पूरा दिल्ली सब पैसे सब कुछ, तो क्या खुश हो पाएंगे? एक कंडीशन लगा दी जाएगी, आपके अलावा दिल्ली में कोई है नहीं, सिर्फ आप इकलौते व्यक्ति हैं, तो क्या खुश हो सकते हैं? दिल्ली में नहीं, पूरे दुनिया में कोई नहीं है, आप अकेले हो, सबके मालिक आप हो, परंतु आप अकेले हो, तो क्या खुश हो सकते हो? क्यों नहीं खुश हो सकते? विनोद को सब कुछ प्राप्त हो जाए, दिल्ली का इकलौते व्यक्ति मालिक हो आप, सब चीजें आपके पास, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छे कपड़े, सब कुछ हो, तो क्या खुश हो सकते हैं? नहीं खुश हो सकते। क्यों नहीं हो सकते?
कुछ ये करने वाला नहीं,
कोई है ही नहीं साथ में। अच्छा चलो मान लिया जाए कि आपको चॉइस मिल जाएगी, इनको मिल जाए कोई बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति पुरुष, और आपको मिल जाए कोई, मान लीजिए अकेले हो संसार में, तो क्या खुश हो सकते हैं? टोटल दो ही लोग होंगे, आप और एक पुरुष, कोई दूसरे पुरुष, तो क्या खुश हो सकते हैं? कि वो संसार में कोई नहीं है, नहीं खुश हो सकते। क्यों? दो लोग किसी भी दूसरे को देखते, सबसे अच्छे कपड़े पहनो, सबसे अच्छा खाना, सबसे और अनाधिकाल तक, ठीक है, फिर आप क्या चाहते हो? कि और लोग भी हों, मैं भी हूँ, कोई कोई और पुरुष हो या स्त्री हो, और भी लोग हों, हमारे प्रकार के लोग भी चाहेंगे, सोसाइटी चाहेंगे। अच्छा मान लीजिए सोसाइटी भी हो जाए और आप भी हो, धनी भी हो, सब कुछ हो, तो भी क्या जरूरी है कि हम खुश होंगे? मान लीजिए जो जिनके साथ आप हमारे प्रेम ना करें, तो खुश हो सकते हैं? अच्छा चलिए मान लीजिए वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु आसपास के लोग आपसे प्रेम नहीं करते, तो क्या खुश हो सकते हैं? नहीं। अच्छा प्रेम भी करते हैं, मम्मी पापा मदर इन लॉ फादर इन लॉ सब प्रेम करते हैं, तो बच्चे बिल्कुल नहीं बात मानते, तो क्या खुश हो सकते हैं? नहीं। तो वास्तव में आज हम समझ पा रहे हैं कि जब तक सब चीज सही नहीं होगी, एक भी चीज अगर खराब हो जाए, तो हम खुश नहीं हो सकते। हमारे साथ हम लोग क्या चाहते हैं जीवन में? खुशी रहना, खुश रहना चाहते हैं, परंतु उसके लिए हमको जानना चाहिए क्या क्या चाहते हैं। हम अकेले नहीं रहना चाहते, कोई साथ में हो कि एक ही व्यक्ति हो, सब लोग हो और सब लोग सही रहे। आप चाहते हैं आपको कोई डांटे, आपके अंदर आपको निंदा करे, फॉल्ट फाइंडिंग करे, ईर्ष्या करे आपसे, चाहते हैं? अगर ये सब कुछ होगा तो क्या खुश रह सकते हैं? शायद सबसे बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, आपको कोई और साथी भी चाहिए और सोसाइटी भी चाहिए और सब लोग आपके अनुकूल हों, कोई भी खराब ना हो, यही चाहिए। इसके बिना ये तो मानते हैं कोई जब भी कोई नहीं हो सकता। यदि ये सब भी हो बट एक्सीडेंट में चारों को कुछ हो गया हो तो क्या कुछ हो सकते हैं? एक्सीडेंट हो गया हो तो भी कुछ नहीं हो सकते। अच्छा चलिए हमारे सब कुछ ठीक है, बस शुगर है, सब जी क्या चाहते हैं कि हम हमारे जो संगी साथियों वो अच्छे हों, कोई हमसे द्वेष ना करे, कोई हमें डांटे नहीं, ये सब सब ठीक हो। हमारे बच्चा हो, बेटा हो या बेटी हो, उसकी खराब आदतें हों तो क्या हम खुश हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो फिर किसी अच्छा माने सब कुछ हो परंतु हमारे पति या पत्नी लॉयल ना हो, कितने कारण हैं हम खुश होते हैं इस ये ठीक हो, 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 ये तो क्या इसी के जीवन में भी इस संसार में हो सकता है क्या? इस वजह से कोई संसार में सुखी नहीं रह सकता। हमें चाहिए हैप्पीनेस, परफेक्ट हैप्पीनेस, वो परफेक्ट लोगों के साथ रह के मिलती है। जब इस जगत में उस जगत से भगवान आते हैं तो ये बताने के लिए आते हैं कि जो तुम चाहते हो ना वो उस जगत में है। केवल हम सब कुछ हो, दिल्ली की पॉल्यूशन में रहकर खुश हो सकते हैं? पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, जीभ के अंदर पॉल्यूशन और बाहर भी पॉल्यूशन। अंदर जीभ की पॉल्यूशन है क्रोध, ईर्ष्या, काम, लोभ, इतनी पॉल्यूशन अंदर है और बाहर भी पॉल्यूशन है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोलोक में ना इंटरनल पॉल्यूशन है ना एक्सटर्नल पॉल्यूशन, वहां कोई हमसे कुछ नहीं चाहता, कोई हमको यूज नहीं करना, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता। यहाँ पे हर कोई हमारे शरीर को चाहता है या हमारे धन को चाहता है, पर क्या हम उस व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं जो हमें पता हो कि हमारे शरीर को चाहता है या हमारे धन को ही चाहता है, हमें नहीं चाहता। भगवान के धाम में कोई भी व्यक्ति खराब नहीं, इसलिए हम वहां पे जाके ही खुश हो सकते हैं। वहां कोई भी व्यक्ति नेगेटिव नहीं, कोई भी व्यक्ति। इस संसार में हम अक्सर अपने पति पत्नी को बोलते हैं या अपने बच्चों को बोलते हैं या मित्रों को, मुझे पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करती, या मुझे पता होता है तुम ऐसे निकलोगे तो पैदा होते ही मर जाते। इस प्रकार की चीजें बोलते हैं। गोलोक में ऐसी पंक्ति कोई इस्तेमाल नहीं करता। एक्सप्लॉयटेशन जीरो, वी आर ऑल लॉन्गिंग फॉर अ परफेक्ट रिलेशनशिप। हमें एक परफेक्ट रिलेशनशिप की तलाश है सबको। परफेक्ट रिलेशनशिप का जो मैं उनको प्यार करूंगा और वो मुझे प्यार करे, हमको कोई नेगेटिव बातें ना हो, कोई हमें एक्सप्लॉयट ना करना चाहे, हम किसी को एक्सप्लॉयट ना करना चाहे, या ना एक्सीडेंट हो, ना ओल्ड एज हो, ना मृत्यु हो। मान लीजिए हम किसी को प्रेम भी करते हैं, मृत्यु हो गई तो ऐसा हम चाहते हैं कि हमसे कोई अलग ना हो। ये सब चीजें हमें क्यों है, ये सब हमारी ख्वाहिशें क्यों है? क्यों है? क्योंकि भगवान में भी यही ख्वाहिशें हैं और हम भगवान के अंश हैं। परफेक्ट हार्मनी चाहते हैं, परफेक्ट। कोई हमें गाली दे, हमें कई बार जीवन भर नहीं भूलता है। भगवान के धाम में कोई टॉन्ट नहीं कर सकता किसी को, इसीलिए भगवान यहाँ पे आते हैं। भगवान कहते हैं कि चिदानंदमय देह होना चाहिए, किसी से खुशी मिलेगी। चिदानंदमय मन हो, चिदानंदमय इंद्रियां हो, स्पिरिचुअल मन हो, स्पिरिचुअल इंद्रियां हो, स्पिरिचुअल बॉडी हो, तुम्हारी और दूसरे व्यक्ति की भी, ऐसे जगत में तुम खुश रहोगे। ये इस जगत की वस्तु नहीं है। भगवान राधा कृष्ण गोलोक में है, अन्य सखियां भी हैं, उनके भी माता है, उनके भी पिता है, ہر سمے کیا ہے وہاں پہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں چھٹی ہو اور ہم ریلیکس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ رہیں گھومنے کے لیے یہی چاہتے ہیں. گولوک میں ہر روز یہی ہوتا ہے, ہر روز جب تک بھیتر میں پولوشن ہوگا تب تک ویکتی دکھی نہیں رہ سکتا. کسی کے بھی بھیتر پولوشن ہو, ہمارے بھیتر یا کسی اور کے بھیتر. پولوشن مطلب کام ہو, کروڈ ہو, لوگ ہو, ایرشا ہو, نیگیٹو باتیں ہو, ٹون دسنے کی عادتیں ہو. بھگوان کے جگت میں ایک بھی ویکتی میں یہ سب نہیں ہوتا, ایک میں بھی نہیں ہوتا, ایک میں بھی نہیں. تبھی سب خوش رہ سکتے ہیں. کوئی بیمار نہیں ہوگا, کسی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, کوئی گندی بات نہیں, کوئی گالی نہیں, کچھ نہیں. سب پریم ہی پریم, دوسرے کو پرزنٹ کرنے کے لیے کاریہ کرنا. کوئی آپ کا شریر نہیں چاہتا, کوئی آپ کا دھن نہیں چاہتا. واستو میں بھگوان کے بھکت جو ہیں وہ بھگوان سے زیادہ آنند انوبھو کرتے ہیں. بھگوان کے بھکت, یہ بات بھگوان کو اچھی طرح معلوم ہے. اسی وجہ سے بھگوان شری کرشن یہ جانتے ہیں کہ میرے بھکت مجھ سے زیادہ آنند انوبھو کرتے ہیں. یہ بات کو جاننے کی وجہ سے اتنی تیور اچھا ہوئی. سب سے زیادہ آنند کون انوبھو کرتے ہیں؟ جو جتنے کلوز بھکت ہوتے ہیں بھگوان کے, جتنے نزدیکی بھکت ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ آنند انوبھو کرتے ہیں. سب سے شریش بھکت کون ہے بھگوان کے؟ شریمتی رادھا رانی. تو سب سے زیادہ آنند انوبھو کون کرتی ہیں؟ شریمتی رادھا رانی. شری کرشن یہ جانتے ہیں کہ بھکت رادھا رانی مجھ سے زیادہ آنند انوبھو کرتی ہیں. اسی وجہ سے بھگوان شری کرشن جو رادھا رانی انوبھو کرتے ہیں آنند, وہ آنند انوبھو کرنے کے لیے کرشن سے گورنگ مہاپربھو بن گئے. تو بھگوان کے بھکت جو ہے بھگوان سے زیادہ آنند انوبھو کرتے ہیں. یہ تو ہے رادھا رانی کی بات. رادھا رانی سے بھی کئی کوٹی گنا زیادہ آنند انوبھو کون کرتی ہیں؟ منجریاں. یہ بات بھی مہاپربھو کو معلوم ہے, بھگوان شری کرشن کو معلوم ہے. بھگوان شری کرشن جب نکنج لیلا میں دیکھا کہ رادھا رانی نے بولا کہ یہ شری کرشن آپ میری سیوا کرو, میرا شنگار کرو, پرنتو شری کرشن تو استمبھی پہ جاتے ہیں رادھا رانی کے درشن مانتے سے ہی, تو شری کرشن سنگار نہیں کر پائے. تو پھر رادھا رانی نے کیا بولا اپنی سکی کو کہ ہے سکی ان سے نہیں ہوگا, تم کر دو. تو جب شری کرشن نے دیکھا کہ ویشوں کو انہوں نے اچھی طرح شنگار کیا, پھر انگوں کا اچھی طرح پہنچا شنگار کیا, تو شری کرشن کے من میں واسنا جگی, کھائی, کب میں بھی اتنا اتنی سندر سیوا کروں گا اور اتنا زیادہ آنند میں انوبھو کر پاؤں گا, کاش ایسا کب ہوگا میرے جیون میں. تو شری کرشن رادھا رانی کا بھی آنند انوبھو کرنا چاہتے ہیں اور شری کرشن منجریوں کا بھی آنند انوبھو کرنا چاہتے ہیں. تو شری کرشن جو ہے سرو بھکت بھاو میں ہیں, سرو بھکت بھاو میں. جب گور روپ میں آتے ہیں تو سرو بھکت بھاو میں ہوتے ہیں شری کرشن. شری کرشن یہاں پہ آ رہے ہیں بھکت کے روپ میں, وہ آسوادن پراپت کرنے کے لیے. تو شری کرشن جو ہیں اپنے رنگ کو, آج شری کرشن کیا ورن ہے؟ رنگ ہے شام ورن. پرنتو جب وہ گور روپ میں آتے ہیں تو رادھا رانی کے ہم لوگ جو کرانتی ہے اس کو انگیکار کر لیتے ہیں. تو شری کرشن کون سے رنگی ہو جاتے ہیں جب گور میں آتے ہیں؟ تو گور ورن کے ہوتے ہیں, ہیم ورن کے ہو جاتے ہیں. شری کرشن کا نام جب گور روپ میں آتے ہیں ان کا نام ہے ہیمانگو. وشنو سہست نام ان کے نام آتے ہیں, سو ورن ورنو ہیمانگو. سو ورن ورن نہیں, سو ورن ورنو. سو مطلب سب سے اتم, ورن مطلب اکشر کا سموہ. کون سے اکشر کا سموہ سب سے اتم ہوتا ہے؟ کرشن. جو کرشن کے سب سے اتم روپ سے ورن کرتے ہیں سو ورن ورنم, وہ ہیں گورنگ مہاپربھو. وشنو سہست نام میں ایک نام ہے شری کرشن کا سو ورن ورنم. और यही नाम भागवत से भी पता चलता है, कृष्ण वर्णम कृषा कृष्णम, कृष्ण वर्णन जो कृष्ण का निरंतर वर्णन करते रहते हैं। तो श्री कृष्ण आप यहाँ पे गौरंग महाप्रभु के रूप में आते हैं राधा रानी का रस आस्वादन करने के लिए और अनेक प्रकार के रसों का आस्वादन करने के लिए। यद्यपि वह स्वयं भगवान है, क्योंकि भगवान को मालूम है कि सबसे ज्यादा आनंद कौन अनुभव करते हैं, भक्त। भगवान के अनेक अवतार हैं, राम अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार इत्यादि, परंतु सबसे ज्यादा करुणा किसमें है, भगवान श्री कृष्ण में सबसे ज्यादा करुणा है। राम से भी ज्यादा, नरसिंह से भी ज्यादा करुणा किसमें है, श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण से भी करुणा ज्यादा किसमें है, श्रीमती राधा रानी में। राधा रानी की करुणा इस प्रकार से है कि शास्त्र बताते हैं यदि राधा रानी किसी को दर्शन दे दे, अकारण करुणा से अपने दर्शन दे दे अगर, तो उस व्यक्ति को भक्ति साधना करने की जरूरत नहीं है, उसे उसी क्षण प्रेम प्राप्त हो जाएगा और भगवत धाम में चला जाएगा। उसी क्षण राधा रानी के दर्शन मात्र से। और गौरंग महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण का युगल रूप है। एक तो कृष्ण जो है सर्वाधिक करुणामय है भगवत तत्व में, ऊपर से राधा रानी का समावेश। अब सोच रहे राधा रानी अपने आप में ही किसी को तारने में कुछ जरूरत नहीं है, सुधा नदी में कारुण्य सार कहा गया है, करुणा का सार है वो। और श्री कृष्ण सर्वाधिक करुणामय, उसमें श्रीमती राधा जुड़ जाए तो श्री गौर बन जाते हैं। अगर श्री गौर हैं कितने करुणामय होंगे, आप सोचिए, बस सोचिए कितने करुणामय होंगे गौर। राधा कृष्ण का युगल रूप है, बहुत ध्यान से समझिए। श्री कृष्ण ने जब राधा रानी की कांति ग्रहण करी, इसी वजह से जब वो पूरे विश्व में घूमे तो श्री गौरंग महाप्रभु के दर्शन करने से, सिर्फ दर्शन करने से सब लोगों को प्रेम प्राप्त हो जाता था तुरंत, दर्शन से सिर्फ, दर्शन से सिर्फ प्रेम प्राप्त हो जाता था। कारण क्या है, कारण रूप गोस्वामी बताते हैं प्रेम प्राप्ति क्या है, हलाग्नि शक्ति का एक कण भी प्राप्त हो जाए तो प्रेम प्राप्ति हो गई। और राधा रानी स्वयं क्या है, हलाग्नि शक्ति स्वरूपा, तो साक्षात हलाग्नि शक्ति का स्वरूप जब सामने आ जाएगा तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा, प्रेम का तुरंत हो जाएगा। ये रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया, कितना सुंदर उत्तर है। अभी रूपता, अब राधा रानी के जब दर्शन होते हैं उनके, उनको जितना आनंद मिलता है वैसी अभिरूपता अपने निकट जीव को भी प्राप्त हो जाती है, उसी जाति का प्रेम प्राप्त हो जाता है, उसी जाति का प्रेम। अब ये सोचिए कि पहले कृष्ण करुणामय, फिर राधा रानी करुणामय, फिर इकट्ठे हो गए तो गौर करुणामय है। अपने आप में करुणा बताने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है, परंतु महाप्रभु कितने कृपालु हैं सोचिए। उसके बाद भी महाप्रभु क्या बने, श्री कृष्ण चैतन्य, अब बोल सकते महाप्रभु गौरंग महाप्रभु प्रेम वितरण करने के लिए अपने आप में वैसे ही वो कर सकते हैं, परंतु उन्हें मालूम है कि इस प्रकार से भी लोग उनके प्रति अपराध करेंगे, गौरंग महाप्रभु के प्रति अपराध करेंगे। तो भगवान ने क्या बोला, गौरंग महाप्रभु ने बोला यदि तुम मुझे प्रणाम भी मत करो, यदि तुम मेरी निंदा भी करो, तब भी मैं तुम्हें प्रेम दान दूंगा। गौरंग महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, इससे करुणामय अवतार इस जगत में कभी भी नहीं हुआ। गौरंग महाप्रभु पता है कब अवतरित होते हैं, 1000 चतुर्युग में एक बार, एक कलयुग होता है 432000 साल का, द्वापर 864000 साल, त्रेता 12,96,000 साल, اور سب سے 17,28,000 سال، یہ سب کل ملا کے کرو تو کوئی کئی کروڑ سال بن جاتے ہیں، یہ ایک چندر یوگ ہے. پھر دوبارہ چندر یوگ آئے گا، تیسری بار آئے گا، چوتھی بار آئے گا، گورم مہا پربھو میں آئیں گے، کروڑوں اربوں سال بیت جائیں گے. کئی کئی خربوں سال کے بعد کیول ایک بار مہا پربھو اوتریت ہوتے ہیں، ایک بار برہما کے ایک دن میں، ایک بار برہما کے ایک دن میں 14 منمنتر ہوتے ہیں. ساتویں منمنتر کے 28 کن یوگ کے اندر گورم مہا پربھو آتے ہیں، اور ہم اسی یوگ میں ہیں. اس سے بڑی کرپا اور کون سی ہے؟ گور نام لے پا رہے ہیں، گور کے ذکر کے درشن کر پا رہے ہیں، ان کا ابھیشیک کر پا رہے ہیں. اس سے بڑی خوش قسمتی کی اور کیا بات ہے؟ تو گورنگ مہا پربھو رادھا کرشن جگل روپ میں کرونا بتانے کے لیے ہی آئے ہیں، پر وہ جانتے ہیں کہ کلیوگ کے لوگ جو ہیں کتنے پتت ہیں. انہوں نے کیا بولا کہ تم میری نندا ہی کیوں نہ کرو، میرے پرتی دویش بھاونا بھی کیوں نہ کرو، تب بھی میں تمہیں پریم سمپدا دوں گا. مہاپربھو کو پتا تھا کہ اگر ان کی کوئی نندا کرے گا تو کیا ہوگا، ان جنتی کا سروناش ہو جائے گا. تو چیتنیہ چریتامرت میں بتایا گیا ہے، مورے نہ مانی لے سب لوگ ہوئے ناش، میری جو بات نہیں مانے گا سب لوگ ہوئے ناش. یہی لاگی کرپات پربھو کرے گا سنیاس، بھگوان کو پتا تھا ان کی کوئی ریسپیکٹ نہیں کرے گا تو وہ ناش جائے گا. کسی وجہ سے بھگوان نے سنیاس ہی لے لیا. آپ سوچیے، کرپا کرنے کے لیے بھگوان نے سنیاس ہی لے لیا. آپ سوچیے تو صحیح، یہ بات کتنی بڑی ہے کہ ساکشات بھگوان جو کہ سرو لوک مہیشور ہیں، بھگوان سرو لوک مہیشور ہیں، اور بھگوان کا ایک کیا نام ہے؟ بھوکتا رام. بھگوان شڈ ایشوریہ پورن ہے، ٹھیک ہے، بھگوان شڈ ایشوریہ پورن ہے، بھوکتا رام ہے، اور جو گورنگ مہا پربھو ہیں وہ نوجیت کے اندر ان کی دو پتنیاں ہیں، وشنو پریا لکشمی پریا، ان کے ماتا پتا ہیں سچی ماتا جگنناتھ مشر، اور ان کے کتنے سنگی ساتھی ہیں، روپ گوسوامی سناتن گوسوامی، یہ سب لوگ جو ہیں بھگوان کے نتیہ سنگی ہیں. پرنتو بھگوان جب اس جگت میں اوترت ہوتے ہیں تو بھگوان سنیاس لے کے ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ سوچیے، اگر ہم کسی سے گھر میں کسی سے پیار کرتے ہیں وہ ان سے الگ ہو جائے تو کتنا کش انوبھو ہوتا ہے، جبکہ پریم بھی نہیں ہوتا اس کی، پرنتو بھگوان سے تو اتنا پریم ہوتا ہے کہ ایک کھن اگر غور نظر نہ آئے تو جینا دربھر ہو جاتا ہے، سانس اٹک جاتی ہے یہاں پہ. اور بھگوان کیا کر رہے ہیں، جب اس دھرادھام پہ آتے ہیں تو ان کے جو پتا ہیں جگنناتھ مشر، ان کا دیہانت ایک پرکار سے کروا دیتے ہیں بھگوان بنا پتا کے، جبکہ سناتن نزدیک میں جگنناتھ مشر کی ایک ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، اپنی پتنیوں کے ساتھ رہتے ہیں، یہاں پہ لکشمی پریا بھی چلی جاتی ہیں. جب بھگوان اس دھرادھام پہ آتے ہیں تو انہیں روپ سناتن گوسوامی، سارووم بھٹاچاریہ، رامانند رائے سب ملتے ہیں، جب وہ نزدیک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بہت سمے بعد. روپ سناتن گوسوامی چٹیاں لکھتے تھے مہاپربھو کو کہ ہے مہاپربھو ہمیں نوید میں آنے دو، مہاپربھو کہتے تھے، مہاپربھو جواب بھی نہیں دیتے تھے، کیونکہ پتا تھا اگر مادھوریہ نوید کی لیلا انہوں نے دیکھ لی تو یہ کوئی کاریہ کر ہی نہیں پائیں گے. ارے بابا، اپنے سے جو اتنا پریم کرتا ہو ان کا بھی چھید سہن کرنا یہ مرتیو سے بھی پران گھاتک ہوتا ہے، زیادہ کشتکاری ہوتا ہے. اور بھگوان نے کس کس سے بھی چھیڑ نہیں سہا، سچی ماتا جگنناتھ مشر، اپنے پتا، اپنی ماتا، اپنی ایک پتنی نہیں دونوں پتنیوں سے، روپ سناتن گوسوامی سب سے الگ ہو کے. اس لیے کیا وہ رادھا بابا سوادن سب کے ساتھ رہ کے نہیں کر سکتے تھے؟ کیا کر سکتے تھے؟ کیا وہ مندری بابا سوادن سب کے ساتھ رہ کے نہیں کر سکتے تھے؟ کیا کر سکتے تھے؟ پرنتو پھر بھی کیونکہ سامانیہ جیو کلیوگ کے بھگوان کی صحیح روپ سے آدر نہیں کر پائیں گے، اس لیے بھگوان نے سنیاس گرہن کرا، ان کا نام پڑا شری کرشن چیتن. श्री गौरंग और श्री कृष्ण चैतन्य में बहुत भेद है। श्री गौरंग सनातन है, श्री गौरंग नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य संन्यास निग्रह का नाम है। श्री कृष्ण चैतन्य किस लिए, किस भजन विग्रह की पुष्टि के लिए? हमारा सबका शरीर क्या है वास्तव में? भजन विग्रह। ये भजन करने के लिए भगवान है दिया, ये भजन का विग्रह है, भोग का विग्रह नहीं है। वी आर ऑल लॉन्गिंग फॉर अ परफेक्ट रिलेशनशिप। महाप्रभु जब यहाँ पे आए, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उसके बाद उनको क्या क्या चीजें कहनी पड़ी? उनको लोग बोलते थे कि ये सन्यासी है, ये मीठा बहुत खाते हैं। सोचिए, भगवान तो सर्व लोक महेश, भगवान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। उनको भी टॉन्ट करते थे लोग। जब महाप्रभु यहाँ पे थे तो अद्वैताचार्य किस रूप में थे? बूढ़े ब्राह्मण के रूप में। सोचिए क्या क्या कष्ट सहने पड़ते हैं भगवान को, उनके परिकरों को, सामान्य जीव के कल्याण के लिए। महाप्रभु ने संन्यास लिया, अद्वैताचार्य बूढ़े होकर घूम रहे हैं पूरे जीवन, सफेद दाढ़ी है, एकदम बूढ़े हो रहे हैं। और जबकि सनातन अवधि में वो क्या है? नित्य किशोर रूप में। रूप सनातन गोस्वामी हमेशा साथ रहते हैं मस्जिद के अंदर, परंतु यहाँ पे कितने सालों बाद, 25-30 साल बाद भगवान को प्राप्त हो। यहाँ भगवान केवल 48 वर्ष रहे थे। भगवान की नित्य प्रिया है, नित्य पत्नी है विष्णु प्रिया देवी। वरुण महाप्रभु पत्नी कौन है? विष्णु प्रिया। हमेशा नित्य संगी, चीर संगिनी है उनकी, परंतु उनसे भी विच्छेद हुआ था। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया था तो उनकी विष्णु प्रिया की जो रोने की चीख सुन लेता था वो व्यक्ति पागल हो जाता था। रोने की चीखे नहीं सुनाई देती थी, इतना प्रेम था विष्णु प्रिया को। और गौरंग महाप्रभु उनको सनातन पति हो, जिनके थोड़े दिन के लिए भी सनातन पति को हमें और संन्यास ले रहे, सोचिए कितना पीड़ा होगी। विष्णु प्रिया की पीड़ा का तो हम सोच भी नहीं सकते। अद्वैताचार्य की पीड़ा आप मैं भी आपको बता नहीं सकता हूँ। सब नित्य लीलाएं, भगवान से अलग एक क्षण के लिए होना बड़ा प्राण घातक होता है। जब इस जगत में भी कोई भक्ति अच्छी तरह कर ले, भाव प्रेम के स्तर तक पहुंच जाए, तो स्मरण ना जिस समय वो करे उसके लिए वही प्राण घातक हो जाए। तो वो तो नित्य संगी है। जीव कल्याण के लिए भगवान को क्या क्या नहीं करना पड़ता। श्री कृष्ण चैतन्य हम बोलते तो हैं, भाई श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, इसमें कितना कुछ छुपा हुआ है, कितना कुछ छुपा है। संन्यास लिया महाप्रभु ने, सर्वलोक महेश्वर किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए संन्यास लिया है, आपको देने के लिए। क्या देने के लिए? जो खुद आस्वादन कर रहे हैं वही देने के लिए। जिस श्रेणी का स्वागत वो करें, वो चाहते आप भी वही श्रेणी का स्वागत करें। अरे हम कली काल के जीव, माया मुग्ध जीव, हम क्या भजन साधन करेंगे? हमको तो बस उनकी कृपा का ही गुणगान करना है। कि हे गौर आप कितने महान, हे गौर हाँ गौर, हाँ गौर, हमको तो बस यही गुणगान करना है। यदि कोई हमारे पैसे के रूप से कोई सहायता कर दे हमारी, जब हमें पैसे की जरूरत हो, तो हम उसके क्या हो जाते हैं? ऋणी, कृतज्ञ हो जाते हैं हमेशा के लिए। और हर जगह जाके बोलते हैं, पता है ये शर्मा जी है ना, उन्होंने मेरी इतनी मदद की थी, उन्होंने मेरी पता है कितनी मदद की थी, उन्होंने मेरे को दे दिया। ये वो कपूर साहब है, उन्होंने हमारे को इतना सब दे दिया। शर्मा जी है, हम हर जगह जाके उनका गुणगान करते हैं, वो कितने अच्छे व्यक्ति हैं। और क्या हम उसी प्रकार से बहुत सारे गुणगान करते हैं क्या? कि हे गौर, हाँ गौर, हाँ गौर, हम क्या भजन साधन करेंगे? हाँ गौर, हम तो गौर की करुणा को याद करके ही मुग्ध, मंत्र मुग्ध होते रहे गौर नाम से। यदि गौर न होते तो ये कहां से प्राप्त होता है सब कुछ? हमारे सब कुछ भगवान है, हमारे सारे संबंध भगवान से ही हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, समझिए अच्छी तरह। हम बोलते भी हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। वास्तव में भगवान ही हमारे माता पिता सखा बंधु सब कुछ सुहित सब कुछ है। तो यही बात गीता में भी बताई गई है 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में। कबू भरता निवास साक्षात गुहरे, इस प्रकार से गतिर भरता प्रभु स्वामी निवास साक्षात गुहरे दह। प्रभु ही सबके भरता है। हम सोचते हैं कि हमारे को रोटी खिलाने वाला है वो हमारा पालन करने, नहीं, बताया जा रहा है प्रभु भरता वो ही है भरता। हमारे सारे संबंध भगवान से ही हैं। इस बात का हमें याद नहीं रहती, इसलिए हम इस जगत में संबंध बनाते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। जब तक कोई व्यक्ति हमसे प्रेम नहीं करेगा तब तक हमारे उस संबंध में सुख नहीं हो सकता। तो जब तक हमारे अंदर एक्सप्लोइटेशन की भावना रहेगी कि हम उससे कुछ चाहते हैं तो वो हम उस व्यक्ति के साथ सुखी नहीं रह सकते। केवल भगवान ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो अकारण करुण है, अकारण उनको वहां से कुछ चाहिए, उनका नेचर ही है कि दूसरे का भला करना, दूसरे को प्रेम करना। किसी को बताया गया मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमी विविधा क्रिया, मैं अपने भक्तों के को सुखी करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करता रहता हूं। तो जब तक हम उस सोसाइटी में नहीं जाएंगे जहां सब लोग अच्छे हों, किसी में ईर्ष्या ना हो, कोई नेगेटिव बात ना करता हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कुछ ना हो, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। और वो व्यक्ति है केवल भगवान, भगवान का लोक। ये आज का दिवस हमें ये याद दिलाने के लिए है कि तुम भी चिदानंद में देह प्राप्त कर सकते हो। ये हमें हर समय याद होना चाहिए, मुझे चिदानंद में देह चाहिए, मुझे चिदानंद में इंद्रियां चाहिए, चिदानंद में मन चाहिए। ऐसे ही सब होने चाहिए तो मैं खुश होऊंगा। एक दूसरे के साथ इस जगत में लोग रहते हैं, किसी से हृदय से पूछे तो बताते रहना पड़ेगा, क्या करें, रहना पड़ेगा, वो क्या करें, ऑप्शन नहीं है। बात आपकी ठीक है, संतों के इसलिए जीवन है, रहना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति खुश हो सकता है क्या? गाड़ी तो चला सकता है, वह बात अलग है, परंतु क्या ऐसे खुशी मिलती है क्या? तो जब तक भगवान के लोक में ना जाए तब तक खुशी नहीं मिल सकती, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति तो ईर्ष्यालु नेगेटिव होगा ही होगा आसपास में। भगवान गौरंग महाप्रभु जब यहां से आए या प्रकट हुए तो ना वो अपने नेत्र खोलते थे ना अपनी माता का दुग्ध पी रहे थे। सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र के गुरु कौन है? अद्वैताचार्य। वो अद्वैताचार्य से उन्होंने पूछा कि हे गुरुदेव, ये तो मेरा दुग्ध पान ही नहीं करता, आंखें नहीं खोलता, क्या करें? अद्वैताचार्य क्या संबंध है भगवान से, मैं आपको समझाने को मैं अभी आप सोच भी नहीं सकते। अद्वैताचार्य ने बोला शशि माता को, आप चिंता ना करो, मैं गौर से एकांत में मिलके आता हूँ। तो गौर से एकांत में मिले तो बहुत बच्चे हैं, छोटे से बच्चे अभी जन्म लिया है, वो बातचीत शुरू हो गई है कि हे गौर, आप अपनी माँ का स्तनपान क्यों नहीं कर रहे? तो गौर ने बहुत बात भी कर रहे छोटे बच्चे लोग। गौर ने बोला हे अद्वैताचार्य, हे आचार्य, आप तो उन्मत्त होके आपने अपने शिष्यों को जो मंत्र दान किया उनको हरिनाम तो दिया ही नहीं, उनकी करे शुद्धि तो हो ही नहीं, और उन्हें मंत्र दे दिया आपने, मैं दूध नहीं पीता ऐसे व्यक्तियों का। सीधा मंत्र दे दिए जाते हैं, बीज मंत्र तो अर्घ्य देकर ऐसे किया था, منتر دے دیا اور ہم کو ہری نام نے دیا. تو ادویتا چاریہ نے بولا اچھا بتاؤ کیا کر تمہارا. انہوں نے بولا ہری کرشن 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 ہری 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 رام 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 ہری ہری. یہ منتر جو ہے شری شکی ماتا کو دیا ادویتا چاریہ نے اور پھر سے منتر سمرن کروائے جو پہلے دیے تھے. پھر لوگ مہاپرو کو باہر لے کے آئے تو پھر ان کو دیا ستن پن مہاپرو نے دوبارہ منتر سمرن کروائے تھے گرو دیو نے اپنے ششیہ کو. تو سمپردائے سے جڑنا پراپر منتر لینا کتنا ضروری ہے. ہری نام سے کرن شبدی ہونا. مہاپرو کتنے کرونا میں ہیں. خود آئے تھے تو سب کو اپنے درشن سے ہی سب کو پریم دے دیا سب کو مکت کر دیا. اب اس کے بعد ان کی سمپردائے چل دی ہے تب سے لے کے اب تک. جیسے آپ اسے پرنالی میں 17th-18th نمبر ہوتا ہے یہاں پہ بھی مہاپربھو کو پتا کہ گاڑی نہیں چلے گی تو مہاپربھو کیا کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو شکتی کر کے کچھ شکشا دے رہے ہیں سب لوگوں کو کہ ہاں بھائی ایسے کرو ایسے کرو. تو بھگوان ہر قیمت پہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس آئیں ہمارے اویدیا کا ناش ہو. اویدیا کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کسی سے بھی سنسار میں سمبندھ رکھ کے ہم خوش ہو سکتے ہیں. اسی کو اویدیا کہتے ہیں. سنسار میں کسی بھی ویکتی سے سمبندھ رکھ کے ہم خوش ہو سکتے ہیں. اس کو ٹیکنیکل بھاشا میں بولے تو کرشن بھولیا سی جیو انادر بہر ملک. اگر کرشن کو بھولے گا تو ہی کسی اور سے سمبندھ ستھاپت کرنے کا سوچے گا. یدی کوئی ویکتی کرشن کو ہمیشہ سمکھ دیکھ رہا ہے ان سے سمبندھ ستھاپت کرنے کا سوچ رہا ہے کیسے کسی اور سے سمبندھ ستھاپت کرنے کا سوچے گا. کرشن بھولیا سی جیو انادر بہر ملک اتیو مایا تارے دے سنسار مایا مایا تب چلے ماتھی. مہاپربھو مہاپربھو کا سمرن کرنا مہاپربھو کے بارے میں ان کے لیلا چریتر کا شرون کرنا اسی سے ہماری کارن شدھی ہوئے گی. اور بہت امپورٹینٹ ٹیچنگ ہیں. ایک ٹیچنگ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا مجھے بہت مہتوپورن لگی. مہاپربھو تو برج بھاؤ کو کے لیے آئے تھے یہاں پہ آسوادن کرنے کے لیے. تو مہاپربھو ایک بار برنداون جانے لگے تو اپنے بھکتوں سے بولا کہ بھائی میں برنداون جا رہا ہوں. تو بھکتوں نے کیا بولا نہیں 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 ابھی برنداون نہیں جانا ابھی سب موسم وغیرہ سمے ٹھیک کریں گے. مہاپربھو نے بولا ٹھیک ہے. بھگوان نے بولا ٹھیک ہے. ابھی شکشا گرو دکشا گرو سے نہیں پوچھا تھا بھگوان نے. ویشنو نے ایک بار منع کر دیا. پھر مہاپربھو نے پھر یہ بولا کہ جو ویشنو کے جو شبد ہیں وہ تو آگ کے سمان ہوتے ہیں یدی اس کو پار کرے گا تو اس کا ناش ہو جاتا ہے. تو مہاپربھو نے اپنے چرتر سے دکھایا. یہ نہیں کہ اپنے شکشا گرو کی بات کو کاٹ رہے ہیں کی بات نہ مان. اگر کسی ویشنو نے کوئی بات بول دی ہے اس کو الگھن کر دیں گے یدی تو اس سے ناش ہو جاتا ہے. تو مہاپربھو پھر ورنداون نہیں. یہ بتایا گیا ایشان ٹھاکر نے ادویت پرکاش میں. پھر مہاپربھو نے ایک اور لیلا کرا. مہاپربھو کو تو بھکتوں کو ہی بیماری نہیں ہوتی تو مہاپربھو کو کیا بخار ہوگا. ان کو مہاپربھو نے ایک بار تھوڑا سا ایک ناٹک کیا کہ ان کو تھوڑا سا بخار ہو رہا ہے. تو مہاپربھو نے بولا اچھا تو بخار ٹھیک کرنے کے کیا کریں ہم. بھکت بولے تو مہاپربھو نے شکشا دینے کے لیے بولا کہ جو میرے بھکت ہیں ان کے چرنوں کا انہوں نے بولا مہاپربھو نے سرو دکھ کھنڈے وپر پادوشتم پانے. سرو دکھ کھنڈے سب دکھوں کا ناش ہوتا ہے وپر پادوشتم پانے. بھکتوں کے چرنوں کا جو امرت ہے چرنامرت ہے اس کے پان کرنے سے ہر پرکار کے دکھ کا بخار کا ناش ہوتا ہے. تو مہاپربھو نے پھر اپنے بھکت کے چرنوں کا امرت گرہن کیا تو ان کو بخار ختم ہو گیا. ویشنو پدجل بھکت بھکتا وشیش اتین مہابل. ویشنو کا وشیش ہے چرنامرت ہے چرنوں کا جو جل ہے چرنامرت ان سب میں بہت شکتی ہوتی ہے. تو مہاپربھو نے اپنے آچر دوارا یہ دکھایا ہمیں تو اور کچھ نہیں کرنا ہے. مہاپربھو کا لیلا کا ہی ہمیں گان کرنا ہے. مہاپربھو کا سمرن کرنا ہے. اسی سے ہماری سب کی शुद्धि होगी। हम कृष्ण नाम से इतना शक्तिशाली होता है, यदि व्यक्ति एक बार भी ले तो उसका उद्धार सुनिश्चित है। तो अगर बार बार लेने के बाद भी अगर कृष्ण प्रेम नहीं हो रहा तो इसका क्या कारण है? क्या कारण है इसका? अपराध। हे जी सुन लीजिए, हेनो कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, तबु यदि प्रेम नहीं नहे अशुधार। समझ आ रही है बात? हेनो कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, बहुत बारी कृष्ण नाम ले रहे हो, तबु यदि प्रेम नहीं नहे अशुधार, तब प्रेम नहीं हो रहा और अशुधार नहीं हो रही तो क्या कारण है? तबे जानी अपराध ताते प्रचूर, जान लो फिर पूरा हमने अपराध किया नहीं, किससे पता चले? अशुभ अशन नहीं हो रहा तो तबे जानी अपराध होते प्रचूर, कृष्ण नाम बीज ताहे ना हो अंकुर। कृष्ण नाम बीज है जिससे अंकुरित नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? अपराध। इसका उपाय क्या है? चैतन्य नित्यानंद ये सब नाहिक विचार, नाम लेते प्रेम देन बहे अशुभ। जो गौरंग महाप्रभु का नाम है इसमें एक विचार नहीं होता इस बात का, अपराध और बिना इसका। तो ये नाम लेने से बहे अशुभ भार। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र तो करना चाहिए, परंतु साथ में हमें गौरंग महाप्रभु का भी क्रंदन करते हुए उनको भी पुकारना चाहिए। ये नाम सर्वाधिक करुणामय है, कृष्ण करुणामय है, राधा करुणामय है, राधा कृष्ण युगल रूप में गौर सबसे करुणामय है, गौर नाम सबसे ज्यादा करुणामय। हृदय से घी करते गौर को पुकारे, गौर सबसे करुणामय है। गौरांग है प्राण गौरांग
है,
भगवत कीर्तन वो कर सकता है सही रूप से जो समस्त पदार्थों से, समस्त चीजों से, समस्त संबंधों से सबसे ऊंचा भगवान को हृदय से मानता है, सबसे श्रेष्ठ भगवान को मानता है और व्याकुलता से करता है कीर्तन, वही वास्तविक कीर्तन है। सब पदार्थों से गौर को, भगवान को ऊपर समझे, बड़ा समझे, रहे सबके साथ, इसलिए मानस शरणागति ही वास्तविक शरणागति है। मानस मन के शरणागति, जैसे गौरंग महाप्रभु के चरित्र द्वारा हमने जाना कि उन्होंने वैष्णवों के मुख से जो निकला कि आप वृंदावन मत जाओ, उन्होंने उसे अपने शिरोधार्य किया। तो हमें भी इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, संत का क्षण और अन्न का कण कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। संत का क्षण और अन्न का कण
कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। संत का क्षण जो है, संग जो मिलता है वो बहुत कीमती होता है, बहुमूल्य होता है, उसको कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर अगर हम वेस्ट करेंगे तो भगवान शायद हमें दे ना दे। और जो अन्न का कण वेस्ट करता है वो अगले जीवनों में पक्षी इत्यादि बनता है, तो एक एक कण बीच से उठा के खाना पड़ता है, एक एक कण। तो संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बात हम सबने सुनी कि हमारा जो वास्तविक खुशी जो है भगवान के साथ संबंध होने से ही प्राप्त हो सकती है, ये सुनी सबने है, पर चित्त में अलग अलग स्थिति के अनुसार सबके बैठ गई है बात। कईयों के मन में सुनते ही बैठ गई है बात कि भगवान से ही केवल संबंध होना चाहिए, तब तभी सुख मिलेगा। क्यों? वो चित्त जो है, वो जो है पात्र जो है वो ठीक है। जैसे प्रहलाद महाराज का नाम आप सबने सुना है, साथ में स्कंद में भागवत में बताया जाता है, प्रहलाद अपने सहपाठियों को असुर बालकों को शिक्षा दे रहे थे कि भगवान की भक्ति करो, भगवान के साथ ही हमारा संबंध है, तभी हम खुश हो सकते हैं। उनके सहपाठियों ने बोला कि भाई प्रहलाद, तुमने ये सब शिक्षा कहां से सीख ली? तुम्हारे टीचर थे, हमारे टीचर से शिक्षा तो कभी मिली नहीं ये वाली। तो प्रहलाद ने क्या बोला कि मेरी माँ का नाम कयाधु, वो जब नारद मुनि के आश्रम में रह रही थी तो नारद मुनि कयाधु प्रहलाद की माँ को शिक्षा दे रहे थे। तो प्रहलाद की माँ क्या है? असुर है जाति से। तो उनके वो पात्र इतनी नहीं थे कि सुना और वो बचा लिया, परंतु प्रहलाद घर में रहते भी सब बचा लिया। तो जो पात्र है वो एक बार सुनने में, ये जो ये कथा आज प्राप्त हुई है, ये कहीं वो एक बार सुन के जीवन बदल जाए, और जिसका एक बार में सुन के नहीं बदलता उसको क्या करना है? तो बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज करेंगे बार बार तो धीरे धीरे बात बैठ जाएगी। जो रिवाइज नहीं करेगा, हम ये मान सकते हैं कि हम पात्र नहीं है बहुत बड़े, ठीक है तो रिवाइज करो, पात्र बन जाओ, ये समाधान है। नहीं तो ये ज्ञान इतना शक्तिशाली, एक बार मिला, किसको छुआ वो व्याकार। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो इस ज्ञान का असर एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन, एक महीना, छह महीना रहेगा, साल रहेगा। और चाहते हैं हृदय में गुजरे और जीवन शैली बने यदि हमारी है, तो इसको बार बार रिवाइज करना होगा सही भक्तों के संग में। ये धर्म जो है, जो इतना गूढ़ तत्व है कि हमारा संबंध केवल भगवान से है, जब तक किसी के लिए काम क्रोध इत्यादि जो है ये सब रहेगा, तब उस जगत में हम रहेंगे, तब तक खुश नहीं रहते। ये सब धर्म की गूढ़ बातें हैं कि धर्म रहता कहाँ पे, प्रश्न किया जाएगा, कहाँ रहता है धर्म? धर्म कहाँ रहता है? इसका उत्तर महाभारत में बताया जाता है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येन गता सा पंथा। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, ये धर्म का जो मूल तत्व है वो महात्माओं के हृदय में ही रहता है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येन गता सा पंथा। तो यदि हम ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करेंगे तो ये तत्व उनके हृदय हमारे हृदय स्थानांतरित हो सकता है। देखिए, ये धर्म का तत्व है, ये पूर्ण आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल चीज स्थानांतरित होती है। जैसे गौरंग महाप्रभु जो अवतरित होते हैं या भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, देखने में लगता है गर्भ से आ रहे हैं, पर गर्भ से नहीं आते। भगवान अपने आप को अपने पिता के हृदय में लाते हैं पहले, जगन्नाथ मिश्र के, और फिर उनके हृदय से सची माता के, सची माता से फिर बाहर आए। वैसे ही धर्म की तारीफ हुई है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जैसे हृदय प्रकाशित कहां से? नीतम गुआयन, यदि संत के हृदय से हमारे घर प्रकाशित हो। धर्म कहीं किताबों में या कहीं पे ऐसे नहीं रहता। इस संसार से हमारे को वास्तव में क्या बेनिफिट हो सकता है? एक बेनिफिट हो सकता है, क्या? कि भगवान से हम संबंध स्थापित करेंगे तो ही खुशी मिलेगी, ये तो क्लियर है। भगवान से किस प्रकार का संबंध स्थापित किया जा सकता है वो संसार से हम देख सकते हैं। कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं? भगवान का कथा भी बन सकते हैं, कि जो फ्रेंड्स होते हैं या बच्चे और माँ बाप में संबंध होता है वात्सल्य का, वो भी भगवान से स्थापित किया जा सकता है। प्रियतमा प्रियतम का संबंध भी भगवान से स्थापित किया जा सकता है। भवन की नायिका बनना, पत्नी बनना, ये भी उस भवन का दास बनना, कोई भी संबंध स्थापित किया, ये भाव किस प्रकार के संबंध होते हैं इस जगत से ग्रहण, इस जगत से हम यही सीखने का है कि किस प्रकार के भावनाएं होती हैं, और कुछ नहीं सीखने, एंटेंगल नहीं होना, क्योंकि जगत क्या है, रिफ्लेक्शन है वास्तविक संबंधों का, रिफ्लेक्शन परछाई, वास्तविक संबंध नहीं है, वास्तविक संबंध वहां है, यहाँ परछाई से देखने कहां से आ रहे हैं, वी ऑल वॉन्ट परफेक्ट रिलेशनशिप जो कि भगवान के साथ ही पॉसिबल हो सकती है, और भक्तों कितना आनंद मिलता है यही बात हम जान सकते हैं गौरंग महाप्रभु के रूप में, भगवान श्री कृष्ण नित्य भक्त रूप में ही है, उस आस्वादन करने में भक्त के आनंद का आस्वादन करने, तो आज इस महा महिमा में गौर पूर्णिमा को वास्तविक मरण को खुश हमें हृदय में उधार पाए, इसी शुभकामना के साथ आज के सत्र को हम अभी नहीं समाप्त करेंगे, अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।